ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम अज्ञानति वेदांतशिज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दश्चैतवैत गदाधर स्वामी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
सो अभी हमने जो सॉन्ग गाया था जिसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा का विस्तार है, सोचिए कि अगर चैतन्य महाप्रभु ने हम पर कृपा नहीं की होती तो आज कहाँ होते हम, है ना। आप दिन में रोज 10 बार सड़कों पर घूमते होंगे, है ना, तो सड़कों पे आप लोगों को देखते हो जिनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञान नहीं है, वो कितनी बुरी तरह से कष्ट प्राप्त कर, कितनी बुरी तरह से, ना कोई दिशा है उनके जीवन की, छोटी छोटी बात में जैसे कोई बच्चे के पास से खिलौना ले लो तो बच्चे को जैसे शौक लग जाता है, और हमें पता है कि इस खिलौने का क्या वैल्यू, क्या मूल्य है इस खिलौने का, लेकिन हम छोटे बच्चे की तरह ज्ञानी है मूर्ख की तरह हम कष्ट में। एक बार मैं अभी लास्ट वीक 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कैंपस का जो एरिया होता है उसके आसपास में एक बार गया था, तो थोड़ी देर आधा घंटा चलिए 15-20 मिनट मैं वेट करने का था, ये कार में बैठे मैं देखा मेरे सामने कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे थे बाइक्स पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उसमें से 2 लड़कियां रो रही थी और उनको समझाने वाले कुछ लोग थे। तो फिर मैं देखा, मैं सोचा कितने मूर्ख हैं आप लोग, किस बातों पे रोना चाहिए किस बातों पे नहीं रोना चाहिए ये भी नहीं पता है। भगवान ने आपको इतना अच्छा भगवान मनुष्य शरीर दिया और भगवान आपका उद्धार करने के लिए तैयार है, भगवान आपको पूरा संदेश देते हैं, गाइड करते हैं, सब करते हैं, यू नो व्हाई यू डोंट लिसन टू कृष्ण एंड यू फुलिशली, यू नो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान को नहीं चाहते, भले रोएंगे मरेंगे कुछ भी करेंगे, है ना, पटक के मरेंगे, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होंगे। ऐसे दुष्ट होते हैं कलयुग के लोग, ऐसे भयानक होते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, एक तो मंद होते, स्लो, धक्के मार के गाड़ी चलानी पड़ती है, काम नहीं करते ठीक से, यू नो मंदा, बहुत ही मंद होते हैं, उनका दिमाग भी बहुत कमज़ोर होता है, उनको आप कितना भी समझाओ पूरा लाइफ लगा देते हैं अनर्थ निवृत्ति में से बाहर निकलने में, लाइफ में भी होता है नहीं होता कोई गारंटी नहीं। सुमंद मतयो का अर्थ है कि वो लोग बुद्धिहीन होते हैं, दिमाग नहीं होता उसको, कितना भी उसका ज्ञान उसको देने पर उसको कोई फायदा नहीं होता है। मंद भाग्य ऐसा होता है कि उसको इतना अच्छा अवसर प्राप्त होता है, जैसे हमारी बात कर लो, हमें हरि नाम जप करने का अवसर प्राप्त होता है, भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन हमारा वो भौतिक आकर्षण जाता नहीं अभी, है ना, वो भौतिक आकर्षण नहीं जाता, दिमाग पे हथौड़ा मारते रहते भक्त लोग, लेकिन हाँ जब सुनते तब अच्छा लगता है, लेकिन आकर्षण इतना गहरा होता है नहीं, कैसे छोड़े इसको। इसलिए कलयुग के लोग है ये मंद भाग्य उपद्रुता का अर्थ है झगड़ा करने वाले लोग, बहुत झगड़ा करते हैं कलयुग के लोग, झगड़ा बहुत करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहते हैं कुछ, सुनते हैं कुछ, समझते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग ये कलयुग का गुण है। हालांकि आपके मन में मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन है। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है। इसलिए ये पर दुविधा है, उनको अच्छा लगता है अगर कोई चीज सही ढंग से चल रही हो थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाते लोग ये इतना आसानी से स्मूथली कैसे चल गया ना? हमें अब तो हमें भी आश्चर्य हो जाता है कई बार कुछ कोई कोई भी चीज अच्छी ढंग से जा रही है समथिंग रॉन्ग यहाँ पर कुछ गलत है ना? अभी अभी सनातन प्रभु मुझे कुछ बता रहे थे, बोले ऐसा है वैसा है, मैंने कहा भैया रिस्की है ये, एक को माला जप कर लिया ये कर लिया शुरू को बायकॉट, एकदम से पहले दिन तिलक लगा लिया, मुंडन कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, माला गला में लगा दिया, यू नो घर में ऑल्टर डाल लिया, शालिग्राम शिला या डीटीज गौरताई यू नो जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा ऐसा कुछ भी लगा दिया, ओ माय गॉड दैट्स। हर एक केसेस में अलग अलग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत संभालना पड़ता है ऐसी चीज़ों को लेकर के। कहा जाता है कि भगवान की कृपा सहज है, लेकिन जो इस कृपा को समझ नहीं पाएगा उसका पूर्ण उसका क्या बोलते हैं एक्नोलेज हाउ यू से अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, उसका उसका महिमा नहीं समझ पाएगा जब तक भगवान की कृपा का, तो ये पॉसिबल है कि वो ये भक्ति मार्ग से वापस चला जाए, क्यों अपराध वो क्या बोलते हैं और मंद भाग्य है, मंद भाग्य उसका भाग्य नहीं है इतना। तो इसलिए बहुत ही सावधान होना चाहिए भक्तों को और भक्त बनाने वाले जो हम भक्त बनाते हैं नए लोग जो आते हैं उन लोग को लेकर हमें सावधान होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत विशाल है, इसी कारण आज हम ऐसे बड़े बड़े उत्सव मनाते, जैसे कल हमने अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया था, अक्षय तृतीया के विषय में बताया कि कल बताया था एक जगह लेक्चर में कि अक्षय तृतीया का अर्थ होता है कि स्थिति का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अक्षय बोलते हैं। ये तृतीया बहुत सारी तृतीया आती है पूरे साल में, कितनी 24 तृतीया आती है ना, 24 तृतीया आती है होनी चाहिए, कितनी आती है 24 तृतीया आती है ना, एक महीने में 2 तृतीया होती है तो 24 तृतीया होनी चाहिए ना। तो 24 तृतीया में एक ही ऐसी तृतीया है जिसका कभी नाश नहीं होता, जैसे कभी आधा तिथि होता है या 2 ओवरलैपिंग होता है, वो कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए इसको अक्षय बोलते हैं, अक्षय तृतीया, इसका नाश नहीं होता है। बहुत सारी चीज जुड़ी हुई है, हालांकि हम अक्षय तृतीया पर प्रवचन तो नहीं करेंगे, लेकिन त्रेता युग जिसमें रामचंद्र प्रकट हुए थे इसका आरंभ कल की तिथि पर हुआ था, गंगा जी का प्राकट्य कल की तिथि पर हुआ था, परशुराम जी का जन्म कल की तिथि पर हुआ था, द्रौपदी का चिरपुरण भगवान ने किया था कल की तिथि पर किया था, युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र जो मिला था वो भी कल की तिथि पर मिला था, और जगन्नाथ जी का रथ कल की तिथि से बनना शुरू होता है। और भी बहुत सारी चीजें बताएं क्या क्या है, माधवेंद्रपुरी ने चंदन यात्रा का जो आरंभ किया था वो कल की तिथि से किया था, रथ बनना आरंभ होता है कल की तिथि से। सो बहुत सारी शुभ चीज जुड़ी हुई है अक्षय तृतीया से, कल से हम भक्तों ने चंदन यात्रा मनाना शुरू किया, चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी उसके मुख्य आचार्य गिने जाते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने ये शुरू करवाया था चंदन यात्रा, हालांकि चंदन यात्रा का सबसे पहला गौड़ी संप्रदाय में इसको चंदन सबसे पहला चंदन लगाया गया था गोपीनाथ जी को, टोटा गोपीनाथ श्री क्षीरचर गोपीनाथ जी को, तो रेमुना में जो क्षीरचर गोपीनाथ है भगवान ने खीर चुराई थी माधवेंद्रपुरी के लिए, तो उस जगह पर यू नो वहाँ पर ये खीरचुरा गोपीनाथ चंदन लगाया था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी चंदन लेके किसके लिए जा रहे थे, जगन्नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए लेके जा रहे, श्रीनाथ जी के लिए क्यों लेके जा रहे थे,
भगवान ने कहा मुझे गर्मी लग रही है,
भगवान को गर्मी क्यों लग रही है,
कि बहुत दिन से वो जमीन के अंदर डटे पड़े थे, इसलिए
भगवान बहुत दिनों से जमीन में क्यों डटे पड़े थे,
क्योंकि उनको अपने भक्त के द्वारा उसका स्थापना करवाना था, इसलिए
कुछ मुस्लिम राजाओं के आक्रमण के कारण पुजारी ने उनको जमीन में छिपा दिया था। तो ये माधवेंद्रपुरी कौन सी फ्लाइट से आए थे? आने के टाइम फ्लाइट था नहीं,
भुवनेश्वर वृंदावन।
तो पैदल चल के गए थे और चंदन के लकड़ियां पड़ी पड़ी उठा करके वापिस लेके, तो गोपीनाथ जी ने उनको ना क्यों बोल दिया? क्या कहा उन्होंने? कौन एक है? कौन गोपाल जी? गोपीनाथ जी, खीर चोर गोपीनाथ और श्रीनाथ जी दोनों एक ही है। अब ये किसने कहा था? इसका अर्थ है कि ये तो परम सत्य हुआ है ना, तो इसका अर्थ है कि जो दर्शन का लाभ आपको श्रीनाथ जी में मिलता है वही दर्शन का लाभ आपको खीर चोर गोपीनाथ में मिलेगा। श्रीनाथ जी में बड़ी धक्का मुक्की होती है, भीड़ भाड़ होती है, गोपीनाथ जी में खाली होता है मंदिर, मंदिर में कोई नहीं होता है, मुश्किल से कोई मिलेगा आपको। हम मैंने सोलामाला का जब वहाँ पर आराम से बैठ के भगवान के सामने किया था गोपीनाथ जी का, सोलामाला का जब ख़त्म हो गया तो दो लोग आए मेरे पास, मुझे कहा कि प्रभु जी इसका कथा बताइए, मैं बैठ जाऊँ। तो पूरा कथा बताया उनको गोपीनाथ जी का दो घंटा। सो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो इनकी कृपा से आज हम ये चंदन यात्रा महोत्सव, भगवान के अलग अलग अवतार राम, आज हम पिछले कोई कई दिनों से रामचंद्र की कथा पर बातचीत कर रहे हैं। ये रामचंद्र की कथा का मुख्य हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती तो रामायण को भी नहीं समझ पाते हम, क्योंकि कलयुग में कृष्ण और राम दोनों के नाम में सारी शक्ति भरी हुई है। और ये नाम, एक को बोलते हैं तारक नाम, दूसरा है पारक नाम। एक है तारक और एक पारक, राम का नाम और कृष्ण का नाम। तो लेकिन ये दोनों ही नाम, उसका उच्चारण करने मात्र से आपको सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जो श्रद्धाहीन होते हैं, जो नाम का उच्चारण नहीं करते, जो भगवान का अनादर करते हैं, वो लोग इसको नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी विशाल है, बड़ी महान है, वो तो सबको बुलाते आप आइए। तो संक्षिप्त में आपको राम कथा के विषय में बात कर रहा था, तो थोड़े बताएंगे आपको छोटी सी कथा है। हाँ जी, बताने वाला था मैं, वो भी बताएंगे। नरसिंहदेव का प्राकट्य अभी कुछ दिनों में आने वाला है, तो वहाँ से मुझे मायापुर से एक मैसेज दिया गया था कि जो भक्त एक्स्ट्रा माला का जप करके नरसिंहदेव को अर्पण करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा है, जो 16 माला का जप करके एक्स्ट्रा माला करेंगे तो उनकी माला की संख्या बताने पर वहाँ पर वो आपकी ओर से वो नाम एक्स्ट्रा माला अर्पण करेंगे नरसिंहदेव को अभिषेक में। तो ऐसा सुविधा वहाँ से करके रखा है गुरुकुल के विद्यार्थियों ने। और भगवान नरसिंहदेव वही स्वयं राम है। हमने पहले कुछ समय पहले आपको हनुमान जी की कथा बताई थी ना, कल बताया, लास्ट वेरिएंट बताया था नहीं, उसके पहले हनुमान जी कितने महान है, क्या क्या ऐसे नारद जी से उन्होंने ज्ञान लिया था, उनकी बिना पत्थर में डाल दी थी। तो ऐसे तो हाँ, आपने सारा सुना था मंदिर में। सो हनुमान जी वो इंटेलिजेंट है ना कि नहीं है? इंटेलिजेंट है हनुमान जी। उनके पास उनके गुरु कौन है हनुमान जी के? मारो तो कवर, हाँ सूर्यदेव, सूर्य के देव उनके गुरु है। सूर्य शिवजी का बेटा माना जाता है, शिवजी का अंश, वायुदेव का बेटा, शिवजी का अंश और सूर्यदेव का शिष्य। और सूर्यदेव के पास जाकर मैं आपसे शिक्षा एजुकेशन लेना चाहता हूँ, मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास नो वैकेंसी की जगह भी खाली नहीं है, पूरा मेरा इंस्टीट्यूट भरा पड़ा है, पॉसिबल नहीं। बोले नहीं, मैं तो यहीं से सीखूँगा, मैं जगह ही नहीं है। इतने कितने कितने बैठे, 60 लाख इन्हों ऋषि बैठे हुए इधर, कहाँ जगह है बैठने। मैं खड़े खड़े करूँगा, खड़े खड़े एजुकेशन हुआ। बोले मैं तो घूमता रहता हूँ तो खड़े खड़े कैसे करेगा, तो बोले मैं उल्टे पाँव घूमूंगा। तो सूर्य आगे, हनुमान जी आगे आगे उनके उल्टे पाँव चल रहे थे और सूर्य उनको शिक्षा दे थे, लेकिन 64 दिनों में उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, सब कुछ ग्रहण कर लिया विद इन 2 मंथ्स। दक्षिणा मांगा, मतलब दक्षिणा दो, बोले क्या इंद्र का मुकुट लाके दे दूं। तो नहीं नहीं, इंद्र का मुकुट तो नहीं चाहिए मुझे, तो आप बताओ कुछ भी बताओ, एनीथिंग। तो बोले मेरा एक बेटा है सुग्रीव, तुम उसकी सहायता करो, लाइफ टाइम उसकी सेवा करो। सोचिए ऐसे गुरु दक्षिणा, लाइफ टाइम उनको एक स्वामी दे दिया कि तुम्हें इसकी सेवा करनी है हमेशा। सुग्रीव का बेटा, सुग्रीव सूर्यदेव का बेटा, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात थी कि सुग्रीव भगवान का भक्त था। सुग्रीव के विषय में संक्षिप्त में बताता हूँ, आज मैं सोचा था कि आपको सुग्रीव और जामवान का संक्षिप्त बताऊंगा, फिर अगली बार नृसिंहदेव का भी पूरा डिटेल करेंगे। सुग्रीव सूर्यदेव का बेटा कैसे हुआ, ये बड़ी विशेष घटना है, ऐसी घटना शायद मुश्किल से बनती है। एक स्त्री थी, उसका पति जो था, उसका पति बहुत बूढ़ा हो गया था और उसके पूरे शरीर पर लकवा लग गया था, चल फिर नहीं सकता था, वो बहुत बूढ़ा था, 70-80 साल का। उसका नाम था उग्रतप, उस व्यक्ति का नाम। उसने अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं की थी, फिर भी उसका नाम था उग्रतप। वो इतना स्त्रीलंपट था कि उसकी पत्नी होने के उपरांत भी वो प्रतिदिन बाहर जाता था स्त्रियों के उपभोग करने के लिए। तो उसको बाद में जब बूढ़ा हो गया, जब चल फिर नहीं सकता था, बूढ़ा हो गया, तो वो पतिव्रता स्त्री थी, पति की इच्छा पूरी करने के लिए पति को टोकरी में बिठा करके ले जाती थी, ये उपभोग करने के लिए स्त्रियों के साथ, ऐसी पतिव्रता स्त्री थी। एक बार इस तरह से वो ले जा रही थी अपने पति को अपने माथे पे बिठा करके टोकरी में, तो वहाँ से एक ब्रह्मा विष्मंड करके कोई ऋषि वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उसने दूर से देखा, ये क्या कितना दुष्ट व्यक्ति है, कितना नीच अधम है, कितना बिल्कुल शर्म भी नहीं है इसको, कितना बेशरम है ये। तो ऐसा सब, तो उसने बोल दिया बैद इस दुष्ट को, हाँ अरे मूर्ख उग्र तप, तुझे लाद नहीं आती, इतना भोगी है और पत्नी को तू तो पाप करता है और पत्नी को भी इस पाप में लगाता है, तेरी पत्नी पतिव्रता नारी है और शुद्ध है, तुझे शर्म नहीं आती, मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया कि कल सूर्योदय होते ही तुम्हारा नाश हो जाए, कल का सूर्योदय होते ही तुम मर जाओ। और उसकी पत्नी सुन लिया, हाउ डेयर यू कैन कर्स माय हस्बैंड, तुम मेरे पति को श्राप कैसे दे सकते हो, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, तुम कैसे उसकी उसको श्राप दे सकते हो। तो बोले मैं सत्य हूँ, मेरा श्राप तो कभी विफल नहीं हो सकता, तो मैं श्राप देती हूँ कि कल का सूर्योदय हो ही नहीं, कल का सूर्योदय नहीं होगा। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि सूर्योदय नहीं होगा। श्राप तो ये था ना कि कल का सूर्योदय ना हो, तो परसों का तो चल सकता है, तो एक दिन के लिए सूर्योदय नहीं होगा, तो ये सूर्यदेव यहाँ से गुजरने वाले थे, वो रथ में सुबह सुबह आके बैठ गए। अरुण सारथी का नाम है, अरुण सूर्यदेव का सारथी अरुण है। तो आके बैठ गए अपने चैरिट ड्राइवर ड्राइवर की सीट पर और तैयारी कर रहा था सूर्य को चलाने की। सूर्य चलता ही रहता है हमेशा, कभी रुकता नहीं है। लेकिन अरुण चल रहा था तो उसने अचानक देखा कि उसका जो स्वामी है वो स्टैचू बन गया था। स्टैचू इन द सेंस कि उसने रोक दिया अपनी गति। और सूर्यदेव ने कहा कि अरुण को कि आज नहीं हो सकता सूर्योदय। बोले क्यों? बोले सती का शाप है, कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले लाइव हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हें हॉलीडे देता हूँ। अरुण वाह, अरुण खुश हो गया। ऐसी भयानक सेवा थी मेरी, जॉब थी कि एक भी हॉलीडे नहीं, लाइफ टाइम डेली नॉन स्टॉप। सूर्य का एक दिन यू वीक ऑफ हो जाए तो क्या होया, कैसे पॉसिबल है? तो अरुण ने कहा कि एक दिन का छुट्टी मिला है, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट करने के लिए मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। स्वर्ग में मुझे कौन रोकेगा ऐसे, तो स्वर्ग में जा सकता हूँ एंटरटेनमेंट करना है थोड़ा। हाँ जाओ, नो प्रॉब्लम। सूर्य ने कहा जाओ जाने के लिए। तो वहाँ से स्वर्ग में जाने से पहले उसने पता किया कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। तो पता पड़ा कि स्वर्ग में एक विशेष प्रोग्राम पार्टी का, डिनर पार्टी का नो प्रोग्राम बनाया है इंद्र ने, और इसमें केवल स्पेशल स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट बुलाए सब ने, वेरी स्पेशल। उसका पास था, बिना पास का कोई जा नहीं सकता था उसके अंदर। तो ये सोचिए यार कैसे जाऊँ, ऐसे तो कैसे एंट्री लेना है। होगा तो बड़ा अच्छा, गंधर्व सब गाएंगे और डांस वगैरह होगा, इट विल बी वेरी वंडरफुल पार्टी, भोज भी होगा अच्छा। तो गए वहाँ पर, अभी जाऊँ कैसे, सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेनका अप्सरा है, मेनका बहुत ही फेमस अप्सरा है। तो उसने सोचा कि मेनका का क्या रोल है इस बार। बोले मेनका कुछ डांस परफॉर्मेंस करने वाली है उसमें। तो वाह, मेनका का डांस परफॉर्मेंस है। तो उसने क्या किया, अपनी शक्ति से अरुण में से अरुण ही बन गया। उसने एक स्त्री का शरीर ले लिया शक्ति, और मेनका के पीछे खड़ी रह गई। उसने गेट पर उसको रोक दिया, भाई कौन हो तुम? बोले मैं मेकअप असिस्टेंट हूँ, मेकअप ये क्या मेनका की असिस्टेंट हूँ, मुझे जाने दो। तो ऐसे भी वो सूर्य के साथ रहता है तो उसका प्रकाश बहुत होता है, बहुत सुंदर था। और सूर्य सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, तो बहुत ही सुंदर था कि बदले थी हो गई थी अभी ये। तो ये तो गए अंदर मेनका के साथ, थोड़ा प्रोग्राम चला, मेनका का बारी आया और उसके साथ उसको देखा इंद्र ने, देखा अरुणी को दूर से, बोले स्टॉप, कोई प्रोग्राम नहीं होगा। बोले क्यों? सबको बोले गेट आउट, सब लोग जाओ, सब लोग चले जाइए। तो बोले सब लोग चले जाइए क्या? मेनका को बोले तुम भी चले जाओ। तो बोले अरुणी, अरुणी ठीक है वो भी। तो बोले तुम रुको, तुम इधर आओ। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम कौन हो तुम, पहली बार देखा तुम्हें? बोले मैं मेनका की असिस्टेंट। अच्छा, मेनका की असिस्टेंट हो, लेकिन पहले तो कभी स्वर्ग में देखा नहीं तुम्हें, वो बड़ी सुंदर हो तुम, इधर रुको अभी, मैं तुम्हें मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मेरे आसन पर बिठा दूंगा, इंद्राणी बना दूंगा, मेरी पत्नी बना दूंगा, तुम्हारी तुम्हारे जैसी हमारे स्वर्ग में एक भी अप्सरा नहीं है, बहुत सुंदर हो तुम। बोले नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं हूँ, मैं तो अरुण हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ ना, तुम स्त्री हो। तो बोले नहीं, उसको इंद्र ने अपनी माया जाल ऐसी बिछाई कि वो अपनी योग शक्ति का उपयोग करके अरुण में से वापिस अरुण बन ही नहीं पाया, स्त्री में से पुरुष बन ही नहीं पाया, ऐसी माया शक्ति उसने इंद्र ने लगाई। और उसने इंद्र ने उसको ऐसा प्रलोभन दिया, ऐसे उसको वातावरण बनाया कि उसने इंद्र का पुत्र प्राप्त कर लिया गर्भ में। अभी अरुणी वहां से गई सूर्य के पास, और सूर्य के पास गई, सूर्य के पास जाके एक दिन हो गया तो आए, बोले हाँ आ जाओ सूर्यदेव ने कहा आ जाओ, बोले बैठो इधर, जाके आए, जाके आया तो सूर्य क्या बात है क्यों मुँह लटका हुआ है, बोले ऐसा हुआ था कि मैं ऐसा सब किया अरुणी बन के गया और इंद्र ने मुझे देखा और उसने मुझे गर्भ दे दिया। तो सूर्य ने कहा क्या, पहले तो उसको हंसी भी आई, क्या तुम अरुणी बने और तुमने गर्भ दे दिया। बाद में बोला कि अच्छा अरुण ये तो बताओ कि वो अरुणी का जो स्वरूप था वो कैसा था, एक बार यहाँ दिखाओ ना कैसा था। तो अरुणी बोला नहीं नहीं नहीं, बैठ गया अपने दुसारथी को, चलो चलो अपने लेट हो रहा है चलो। तो बोले नहीं एक मिनट लगेगा मुझे वो फॉर्म देखो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो अपना स्वरूप दिखाओ। तो उसने अरुणी का स्वरूप दिखाया तो वहाँ पर सूर्यदेव मोहित हो गए, तो सूर्यदेव ने उसको दूसरा गर्भ दे दिया। तो वो सोच रहा था कि मैं ठहरा पुरुष और ये दोनों ने मेरे गर्भ दे दिया, ये क्या बात, तो बड़ा अन्याय हो गया मेरे साथ। तो बोले दोनों गर्भ उठा करके बोले इसको हटाओ कहीं से, मैं मेरी मेरी अपनी कोई पत्नी नहीं, मैं कहाँ से लेकर उसको करूँगा इसका पालन पोषण। तो उसको योग शक्ति के बल से ऋक्षराज के पत्नी के गर्भ में डाल दिया, ऋक्षराज। तो ऋक्षराज की पत्नी के गर्भ में दो शिशु का जन्म हुआ भाभी, यू नो। तो जैसे उनका अंश आया गर्भ में, दोनों इतने प्रभावशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, एक का नाम हुआ सुग्रीव और दूसरे का नाम हुआ बाली। सुग्रीव और बाली, बाली किसका अंश था ना,
इंद्र,
बाली था इंद्र का अंश था और सुग्रीव था वो सूर्य का अंश था, सूर्य का बेटा हालांकि। तो ये दोनों सुग्रीव और बाली भाई थे, बाद में आपको पूरा कथा पता है सुग्रीव बाली के बीच में क्या हुआ था। लेकिन सुग्रीव जो था वो भक्त रामचंद्र का भक्त था, बाली भी इतना महान था, बाली जो था वो भी इतना महान था कि रावण को अपनी कोख में लेके घूम रहा था, इतना शक्तिशाली था, बाली के सामने रावण कुछ नहीं कर पाता था, इतना शक्तिशाली था बाली। तो सुग्रीव राम की शरणागत हुआ और भगवान ने सुग्रीव को अपनी मित्रता प्रदान की थी, सुग्रीव को अपना मित्र बनाया था और हनुमान उनका दास था सुग्रीव का, हनुमान उनका सेवक था और हनुमान एक्चुअली तो राम का सेवक था। तो सुग्रीव और हनुमान और राम तीनों का अपना काम हो गया, सुग्रीव को अपना मित्र मिला भगवान के रूप में, हनुमान को अपने प्रभु मिल गए और राम को अपनी सीता मिल गई, हनुमान जैसा दास मिल गया, सुग्रीव जैसा मित्र मिल गया। तो सीता की खोज के लिए उन्होंने चार टीम बनाई थी, सुग्रीव ने जिम्मेदारी उठाई थी कि सीता की खोज हम करेंगे वानर सेना, क्योंकि ये बात उनको पहले बताई गई थी किसी ने, किसने बताई थी, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, बीच में एक राक्षस आया था उसने पूरा बताया था, है ना, वो तो उसने बताया तुम्बुरु राक्षस था शायद, तुम्बुरु कोई उस तुम्बुरु विद्याधर, उसने पूरा बताया था कि वानर सेना तुम्हारी हेल्प करेगी। तो ये चार डिपार्टमेंट, चार दिशा में चार टीम भेजी थी, नॉर्थ में 30,000 वानर सैनिक भेजे थे वानरों, साउथ में 80,000 वानर और वेस्ट और ईस्ट में 10,000 वानर। कितने ओवर सब मिला करके, एक लाख तीस हजार वानरों को भेजा था सीता की खोज में। परिणाम ये कहा गया था कि कोई भी सीधा सीता को लेके वापिस नहीं आना, तीन पार्टी वापिस आ गई, एक पार्टी वापिस नहीं आई, साउथ में गई थी वो, उसमें 80,000 थे, उसमें जामवन अंगद हनुमान ऐसे सब स्पेशल हीरोज थे साउथ में, वो वापिस नहीं आए थे ये लोग। अंगद ने तो बाद में सोचा भी कुछ हनुमान बोले अब तो और सीता का खोज नहीं हो पाया, तो अब तो हम अपना ये मुंह लेके कैसे जाएंगे वहां पर राम के पास, तो चलो हम सब यहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे। तो हनुमान का मूर्ख तुम लोग, ये राम की सेवा, ये इस तरह से सेवा की जाती है राम की? ऐसे नहीं होता है। लेकिन उनका जो लीडर था वो कौन था? वो पर्टिकुलर पार्टी का एक लीडर था, जाम्बवान। वो भगवान का बड़ा तीव्र भक्त था, उसने सब देखा है। जाम्बवान, जाम्बवान जानते हो, बहुत इतना महान व्यक्ति है, उसका अंदाजा नहीं आपको कितना महान व्यक्ति। जाम्बवान अभी भी जीवित है, यही रहता है सौराष्ट्र में कहीं पर, है ना। बहुत फेमस व्यक्ति है, वेरी फेमस जाम्बवान। जाम्बवान का क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ज्ञान लेने गए थे ना शुरू शुरू में, सृष्टि का सर्जन करने से पहले ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास, नाभि में से उनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। और जन्म देखा तो आसपास में कोई है नहीं, तो तप 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 सुना तीन बार, तपस्या किया उन्होंने ब्रह्मा जी ने। और तपस्या करने के बाद फिर भगवान के पास ज्ञान लेने गए, तो भगवान ने उनको चतुष्टों की भागवत बताया, अहम एवा सम एवा ग्रे वाला श्लोक वो बताया और गायत्री मंत्र दिया। तो ये सब करने के बाद, ये बात जब बता रहे थे, तो उनके कान में से, भगवान के कान में से दो बूंद पसीने के निकले, और जो मधु और कैटब नाम के राक्षस बने, मधु कैटब। तो मधु और कैटब तो इतने प्रभाव, इतने बलवान थे, भगवान से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी पसीना पसीना हो गए। ये कि इसको अभी यहाँ सर्जन की बात हो रही थी, विसर्जन तो किया भी नहीं, हो क्या आके प्रकट हो गया, ये असुविधा हो गई। तो मधुकैटब इतने बलवान बलशाली थे, वो बोले सबको खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो, जो भी दिखता सबको मार डालो, ब्रह्मा जी ब्रह्मा को मार डालो, सबको मार डालो, कोई जितना जिंदा बचना ही नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की ओर देखा, इसका रक्षा करो, मेरा रक्षा करो, ये लोग तो मार डालेंगे भी। नारायण ने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो विष्णु गए उनके पास, विष्णु ने कहा आप इतने महान योद्धा हो मधुकैटब, तुम्हारी शक्ति अब बहुत सर्वोच्च शक्ति है तुम्हारे, मैं एक आशीर्वाद दोगे मुझे? विष्णु ने कहा। तो मधुकैटब ने सोचा कि देखो ये मुझसे हमसे शरणा को तो डर गया हमसे, बोलो क्या वरदान चाहिए, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। बोले वो तो हम भी चाहते हैं आपसे युद्ध करना, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले तुम हमें तुम हमारी हत्या नहीं करोगे कुछ स्थान पे, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, ये जहां पर भी होगा वहां पर हमारी हत्या नहीं करना, यू नो इन लोगों से हत्या नहीं करना। भगवान ने बोला ठीक है, क्योंकि तुम भौतिक सृष्टि के हो, ये बहिरंग शक्ति है पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, मैं अंतरंग शक्ति का हूँ, मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान फर्स्ट क्लास युद्ध हुआ फाइट, ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी को पसीना हो गया, ये मरेगा कैसे मधुकैटब। जब उनको पसीना हुआ तो पसीने का एक बूंद उनके गाल पे अटका हुआ था, ब्रह्मा जी के गाल पे। तो ब्रह्मा जी को इरिटेशन हो रहा था, गाल पे बूंद क्या कर रहा है पसीने, तो उन्होंने गाल पर से हटा दिया। जैसे ही गाल पर से हटाया वो गिरा जमीन पर, जैसे जमीन पर गिरा वो उसका बड़ा स्वरूप लिया, और उसमें से जाम्बवान प्रकट हुए सृष्टि की शुरुआत से पहले। तो जाम्बवान बड़ा भालू, बहुत सारे बाल वाला, ये अजीब प्राणी है। बोले वो आया, बोले आपने मुझे प्रकट क्यों किया, क्या करना है मुझे? ब्रह्मा जी के पास आके बोले, बोले मैंने कोई प्रकट नहीं किया, तो अपने आप प्रकट हुआ है। बोले काम कर, बोले मैं कोई इंटेंशन नहीं, अभी तो ऐसा करो, अभी टेम्पररी जब तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे क्या करना है तुम्हारा, तभी अभी अभी तुम चले जाओ जम्बू नद करके रिवर है, जम्बू नद है ना, जम्बू जम्बू रिवर है, जाम्बू से बनी हुई, जाम्बू जाम जो होते हैं ना फ्रूट्स, जाम्बू उसका जो रस होता है उससे बनती है रिवर, यू नो समुंदर जैसा बड़ा। तो उसके वहाँ पर एक आइलैंड है जम्बू नद करके, जम्बू नद पर एक आइलैंड है जम्बू नद द्वीप करके, तो जम्बू द्वीप भी बोल सकते कई बार उसको। तो एक आइलैंड है वहाँ पर आप जाइए, उस जगह पर वहाँ पर बैठो, कुछ करना मत। तो वहाँ पर गया और वहाँ से वो तो यहाँ पर देखा, अरे यहाँ तो कोई फाइटिंग हो रही है, तो ऑडियंस बन गया, वाओ वेल डन तालियां बजाने लगा, विष्णु का सपोर्ट कर रहे थे, बोले इसको उठा के पटको, उसको उधर से मारो, वेल डन, यो ताली बजाता था, सीटी बजाता था, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो उसने मधु कैटअप को मारता हुआ देखा। भगवान को क्या कभी कभी फाइटिंग करने की इच्छा होती है ना, तो ऐसे बुला देते हैं दो एक दो लोगों को, फिर फाइट करते, फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट, नाइस फाइट। उसके बाद फिर उनका ख़त्म कर दिया, मधु कैटअप का ख़त्म कर दिया। और जामवान ये सब देख रहे थे, जामवान को चिरंजीवी का वरदान था, चिरंजीवी कभी मरेगा नहीं। तो बाद में फाइटिंग ख़त्म हो गई, तो विष्णु के पास गए, जामवान जी बोले नहीं फाइटिंग क्यों ख़त्म कर दी, फाइटिंग करो दूसरे को, दूसरे किसी को बुला लो, फाइटिंग करो मज़ा आ रहा है फाइट देखने में। तो विष्णु ने हंसकर कहा कि अभी सर्जन की शुरुआत होगी, फिर देखना बहुत सारी फाइट होने वाली है, तो ये सारी फाइट को तुम देख सकते हो। मैं जितनी बार प्रकट होऊंगा, जितने असुरों को मारूंगा, प्रकट होने के बाद सारे सारे लीला तुम देख सकते हो। तो जामवान जी ने भगवान के सारे अवतार का दर्शन किया, मत्स्य अवतार का दर्शन किया, जो सप्तर्षि थे तो उसमें भी वो बोट में बैठे थे, कुरुमा अवतार में भी थे, ये वरा रूप में प्रकट हुए, उसको जोर से एक झापट मार दिया वरादेव ने हिरण्याक्ष को, हल्का सा थोड़ा सा ऐसे गाल पे ऐसे किया तो मर गया वो, तो उसकी आंखें बाहर आ गई, उसकी आंखें बाहर आ गई तो इसने कैच कर ली, उससे खेलने लगा जामवन हिरण्याक्ष की आंखों से। और ये नरसिंहदेव प्रकट हुए, तभी भी उन्होंने देखा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मार रहे नरसिंहदेव, पूरी लीला का दर्शन किया, स्तुति किया जामवान जी ने। कृष्ण रामचंद्र की लीला में तो थे ही, अभी यहाँ पर कृष्ण की लीला में भी है, देखते हो ना, है ना, अभी भी है कलयुग में भी है, वहाँ पर आप जाइए, जामवान जी अभी भी है। तो बहुत शक्तिशाली और बहुत विशेष जीव है जामवान जी, ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। हाँ हाँ जाइए एक बार ट्राई करके देख लो, देखिएगा आप। तो जाम्बवन जी और ये सुग्रीव, ये दोनों ही भगवान के पार्षद, एक ब्रह्मा जी का पुत्र और सूर्यदेव का पुत्र है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भगवान ने अपनी लीला का विस्तार करने के लिए कैसे कैसे जीवों को यहाँ पर रखा है। सुग्रीव सूर्य का बेटा था और बाली इंद्र का बेटा था दोनों, लेकिन भगवान ने ऐसी ऐसा लीला भगवान की योजना के बिना हो नहीं सकता, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने ऐसा सोचा है, भगवान ऐसा चाहते हैं। और इन लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया भगवान का कभी, कोई सुग्रीव ने नहीं, बाली ने नहीं, जामवान जी ने, चिरंजीवी है तो हमारे यहाँ भौतिक जगत का कष्ट भी हो तो देखते होंगे, हालांकि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, तो भगवान का विरोध नहीं किया। तो भगवान की लीला भगवान की योजना से बनती है, और इसलिए भगवान की योजना में हमें सहयोग देना चाहिए, भगवान की लीला में हमें सहयोग देना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है, उस लीला को क्या कहते हैं, संकीर्तन लीला। संकीर्तन लीला का अर्थ क्या है पता है आपको, क्या है ये जो महाप्रभु का प्रकट्य हुआ था कि पृथ्वी में जितने नगर गांव है सब जगह हरिनाम का प्रचार होगा, युग धर्म का फैला प्रसार करना, ये उनकी संकीर्तन लीला है। हालांकि वो तो यहाँ पर कितना साल रुके, 48 साल रुके, तो उसके बाद उनके काम, उनका जो कार्य है उसका विस्तार करने की जिम्मेदारी किन लोगों की है, परंपरा ने किया, और परंपरा में हम लोग जुड़े हुए आज इस परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की पुरुष शिष्य परंपरा में। तो ये कार्य किसका होना चाहिए, अब ये हमारा होना चाहिए ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आज आप भी पार्षद बन सकते हो। जैसे जामवन जी रामलीला में पार्षद हुए, कृष्ण लीला में उनकी बेटी को उन्होंने दिया था जाम्बवती, है ना। तो आज आप भी कृष्ण लीला में शामिल हो सकते हो इसी समय। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ प्रभु जी देखो भागवत के पन्ने में कृष्ण लीला बताइए, नहीं, आज आप भी कृष्ण लीला में शामिल हो सकते हो। कैसे? चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की सेवा में जुड़ करके। जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, ये सारे भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। तो आज नहीं तो कल सब भक्तों का उद्धार अवश्य हो जाएगा। जो लोग ने चैतन्य महाप्रभु, अभी अभी हमने गाया था ना, महाप्रभु नामे नदिया माताया, उसके पहले तोमा है नो कथा देने न देने, बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया महाप्रभु ने। अनलिमिटेड अनलिमिटेड लोगों का उद्धार हुआ, तो आप भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करेंगे? लेकिन इसका अर्थ नहीं, चल अपना तो उद्धार होने ही वाला है, ना करो ना जो करना है, ये गलत बात है। ऐसे महान है चैतन्य महाप्रभु, उनकी कृपा का दुरुपयोग करोगे क्या आप? आपको अच्छा लगेगा ये करना? हमें अच्छा लगेगा उनकी कृपा का दुरुपयोग करना? अगर कृपा का सदुपयोग करना चाहते हो तो उन भक्तों के पास जाओ और उनसे सुनो कि क्या क्या उपाय है, क्या सेवा करना चाहिए हमें, जिससे गुरु और चैतन्य महाप्रभु दोनों हमसे प्रसन्न हो। प्रभुपाद का एक छोटा सा स्माइल प्राप्त करने के लिए शिष्य पूरा जान लगा देते थे उसमें, है ना। यू नो दैट ना, यमुना माता जी वाला कथा आपको पता है? सनातन जी माइट हैव हर्ड यमुना माता जी ने राइस दाल वाली कथा, पता है ना आपको?
ट्रेन
वाला महाप्रभुपाद ने कहा, यमुना माता जी ने पूछा क्या खाएंगे आप, महाप्रभुपाद ऐसे बोल दिया राइस दाल। अभी ट्रेन में राइस दाल कहाँ मिलेगा? बस गुरु प्रभुपाद ने बता दिया, बस देखो क्या किया उन्होंने। वहाँ पर जाके पूरा बर्तन बर्तन सब कुछ साफ किया, पूरा किचन साफ किया, वहाँ पर राइस दाल बनाकर गरम गरम खुद को लेके बना के लेके आए। किसी ने उनको बोला ये करोगे तो मेरे बोले राइस दाल नहीं बना, बोले ट्रेन में से कूद पड़ोगी, बनाने दे। बोले ठीक है, बनाने दिया। तो बाद ऐसे भक्त थे जो प्रभुपाद के लिए कुछ भी करा। और ऐसे प्रभुपाद ने बताया, इसका अर्थ ये नहीं कि यू नो आप कुछ भी कर रहे हो, गुरु का आदेश जो है उसको समझ के उसका पालन करो। गुरु ने कहा ये करो तो फिर ये करना है, ऐसा नहीं कि क्यों करना है, करना है, क्यों करना है वो गुरु से समझ लो, है ना। लेकिन करना तो है ही, गुरु जी ने कहा, इसलिए तो इसलिए उसका सब भक्त सिंसियर बनिए। सिंसियर तो हो ही आप। तो हनुमान जी के विषय में बता रहा था आपको, संक्षिप्त बता देता हूँ एक वन मिनट में। यह अहोबिलम करके जो जगह है ना, जहाँ पर नरसिंहदेव प्रकट हुए, नॉन नरसिंह क्षेत्र है। आप में से बहुत सारे भक्त शायद जा चुके, कौन गए? अहोबिलम, हाँ। तो वहाँ पर अभी गए थे, अच्छा। तो अहोबिलम नॉन नरसिंहदेव का मंदिर है, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पर एक मैं गया था, एक वहाँ पर एक मंदिर का नाम है करंज नरसिंह, करंज नरसिंह एक भगवान का बहुत सुंदर इलाका है, एरिया बहुत सुंदर है। आसपास में कोई नहीं, कोई रहता नहीं, केवल पेड़ ही पेड़ है। जब मैं गया तब तो ऐसा ही था, पेड़ ही पेड़ है, शांत एकदम, पक्षियों का आवाज़ और किसी का आवाज़ नहीं। मैंने वो भक्त को पूछा, भाई इतना शांत क्यों? बोले यहाँ पर हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए सब मैं अच्छा तपस्या कर, तो दिखाओ दिखाओ कहाँ पर है हनुमान जी। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सुंदर, जैसे कोई बंदर बैठा हुआ ऐसा हनुमान जी का एक मूर्ति था वहाँ की, ब्यूटीफुल। और ऐसे लगे जैसे हनुमान जी ना, कोई बंदर ऐसे ध्यान में बैठा हुआ आपका कोई बात करेगा ऐसे कुछ समय। तो मैं देखा बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ पर मैंने पूछा इसका क्या कथा है। हुआ था ऐसा कि हनुमान जी यहाँ पर आए थे कुछ समय के लिए, यहाँ पर तपस्या कर रहे थे इस स्थान पे। तपस्या कर रहे थे तो वो राम 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 ऐसे तपस्या कर रहे थे, ऐसे राम 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 कर रहे थे। सामने नरसिंह देव प्रकट हुए, नरसिंह मैं इधर हूँ। तो हनुमान ने ऐसे देखा, आँख खोला तो सिंह था ना वो, तो लायन, तो बोले जंगल का शेर आ गया। तो हनुमान जी ने बोला, भाग यहाँ से, मैं तपस्या कर रहा हूँ, राम जी का नाम पता नहीं तुझे, देख मैं तपस्या कर रहा हूँ। नरसिंह ये क्या हो रहा है? बोले मैं ही तो राम हूँ, मैं हूँ राम। नरसिंह हमने सोचा ये तो सच में पागल है, अपने आप को राम कहता है, गदा पकड़ ली, बोलो दिखाऊं क्या राम किसको कहते हैं। अपनी गदा उठा ली, बोले अच्छा तुम राम हो, क्या प्रमाण क्या है इसका कि तुम राम हो? तो भगवान और नरसिंह देव ने अपने और दो हाथ प्रकट कर दी, धनुष बाण वाले, देखो हो सॉरी प्रभु आप राम हो, आपको मैं पहचाना क्यों नहीं, ऐसा क्या है आप ये रूप के लेके क्यों आए, फिर राम के रूप में क्यों नहीं आए? तो नरसिंह देव ने कहा ये मेरा क्षेत्र है नरसिंह देव का, यहाँ पर तुम कृष्ण को बुलाओगे तो भी मैं ही आऊँगा, राम को बुलाओगे तो भी मैं ही आऊँगा, ब्राह्मण को बुलाओगे तो भी मैं ही आऊँगा। रावण तो कितना विशाल का है, लेकिन नरसिंह देव का क्षेत्र है, तो नरसिंह देव के क्षेत्र में जो भी तपस्या करोगे वो प्रकट होंगे, नरसिंह देव ही प्रकट होंगे। तो इसलिए कहा कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ, मैं ही नरसिंह देव। तब हनुमान जी ने नरसिंह देव का फिर स्तुति किया, तो इस तरह से वहाँ पर करण जो नरसिंहदेव है, हनुमान जी ने वहाँ पर नरसिंह जी का सेवा किया था, अभी भी सेवा करते डेली, बहुत सुंदर मंदिर है, आप जाइए कभी, हनुमान जी रोज़ सेवा करते नरसिंहदेव का, इट्स वंडरफुल। नरसिंहदेव भगवान की जय। स्टॉप हियर, कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं है तो मत पूछिए। हरे कृष्णा।